ये आकाशवाणी दिल्ली है। दिल्ली मंत्रिमंडल ने महिलाओं को सहायता राशि देने वाली महिला सम्मान योजना को पारित किया। निर्वाचन आयोग ने आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव के सिलसिले में महत्वपूर्ण बैठक की। नई दिल्ली के इंडिया गेट पर 22वां दिव्य कला मेला आज से शुरू हो गया और भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश सबसे कम उम्र के विश्व शतरंज चैंपियन बने। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुदिता। दिल्ली मंत्रिमंडल ने आज महिलाओं को सहायता राशि देने वाली महिला सम्मान योजना को पारित कर दिया है। इस योजना के अंतर्गत राजधानी में रहने वाली 18 वर्ष से अधिक उम्र की हर महिला को सरकार प्रतिमाह एक स्थायी राशि प्रदान करेगी। इस योजना की पंजीकरण प्रक्रिया कल से शुरू होगी। मुख्यमंत्री आतिशी ने इस निर्णय की सराहना करते हुए कहा कि उनकी सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के वादे को पूरा किया है। वहीं श्री केजरीवाल ने पार्टी मुख्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान घोषणा की कि महिला सम्मान योजना के अंतर्गत वादा किए गए 1,000 रुपये को बढ़ाकर 2,100 रुपये कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि यह निर्णय बढ़ती हुई महंगाई को देखकर लिया गया है। श्री केजरीवाल ने बताया कि आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीख आने वाले 10-15 दिनों में घोषित हो सकती है, जिसके कारण यह राशि महिलाओं को चुनाव से पहले नहीं मिल पाएगी।
दिल्ली की सभी माँ बहनों को कहना चाहता हूँ, अगले 2-3 दिन से के बाद से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता गली गली में जाएंगे, घर घर में जाएंगे। आप अपना रजिस्ट्रेशन कराओ, वो आपको रजिस्ट्रेशन कार्ड दे के आएंगे। कार्ड को संभाल के रखना और चुनाव के बाद आपका ये वाली योजना जो 1,000 रुपए की आज पास की है, इसको बदल के 2,100 रुपए करेंगे और चुनाव के बाद आपके अकाउंट में 1,000 रुपए नहीं आएंगे, आपके अकाउंट में 2,100 रुपए आएंगे।
भाजपा ने दिल्ली सरकार के इस निर्णय की आलोचना की। दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी इसी तरह की घोषणा पंजाब में भी कर रही थी, लेकिन उसके तहत अभी तक किसी को पैसे नहीं मिले हैं। श्री सचदेवा ने कहा कि ये केवल एक चुनावी प्रचार है।
पंजाब चुनाव से पहले आपने वहां पर भी माताओं बहनों को राशि देने की घोषणा की थी, किसी के अकाउंट में 1 रुपया आपने नहीं दिया है। अब जब लोकसभा चुनाव सर पर है और आपको दिख रहा है कि सामने आपकी हार आपके सामने मंडरा रही है, तो आपको अब लॉलीपॉप देना है।
निर्वाचन आयोग ने आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आज दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी, सभी जिला चुनाव अधिकारियों सहित अन्य अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में आयोग ने विशेष पुनर्निरीक्षण 2025 की प्रगति और चुनाव संबंधी तैयारियों की समीक्षा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जल जीवन मिशन की सराहना करते हुए कहा कि इस योजना ने विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि अपने दरवाजे पर स्वच्छ पानी के साथ महिलाएं अब कौशल विकास और आत्मनिर्भरता पर ध्यान केंद्रित कर सकती हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज लोकसभा में कहा कि दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस इलाज योजना जल्द ही पूरे देश में शुरू की जाएगी। लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में उन्होंने ये बात कही। श्री गडकरी ने कहा कि 6 राज्यों में प्रचलित योजना जल्द ही उत्तर प्रदेश और बाद में देश के बाकी हिस्सों में शुरू की जाएगी।
इसमें जो व्हीकल इंश्योरेंस होगा उसमें 7 दिन तक का खर्चा या 1.5 लाख रुपए वो उनको तुरंत मिल जाएगा। मैं उनको और बताना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश में ही इसकी शुरुआत हो रही है और अगले 3 महीने में ये पूरे देश में इस योजना की शुरुआत करेंगे।
राजमार्गों पर दुर्घटनाओं की बढ़ती संख्या पर चिंता व्यक्त करते हुए श्री गडकरी ने सदस्यों से ऐसी सड़क दुर्घटनाओं के कारणों का पता लगाने के लिए हर जिले में दुर्घटना निवारण समितियां गठित करने का अनुरोध किया। उन्होंने बताया कि सड़क दुर्घटना के 30% पीड़ितों की मौत शुरुआती इलाज में देरी के कारण होती है। श्री गडकरी ने कहा कि 6 राज्यों में लागू कैशलेस उपचार योजना ने 2100 लोगों की जान बचाई है। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने आज राजधानी के द्वारका स्थित गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय के रजत जयंती समारोह और 27वें स्थापना दिवस के समापन की अध्यक्षता की। इस अवसर पर श्री सक्सेना ने विश्वविद्यालय के रंगभूमि, स्वास्थ्य केंद्र और विश्वविद्यालय हब और अतिथि गृह का उद्घाटन किया। इसके साथ ही उन्होंने एक रजत जयंती सिक्का, दो पुस्तकें, एक नया लोगो और विश्वविद्यालय का विजन 2047 दस्तावेज भी जारी किया। उपराज्यपाल ने विश्वविद्यालय की रोबोटिक्स लैब और टीवी स्टूडियो का भी डिजिटल उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली के नरेला में विश्वविद्यालय का आगामी नया परिसर और गयाना में अपतटीय परिसर GGSIPU के विकास, नवाचार और प्रगति का प्रतीक है। उन्होंने इस अवसर पर विश्वविद्यालय के कुलपति, संकाय और छात्रों को भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। नई दिल्ली नगरपालिका परिषद NDMC ने अपशिष्ट पृथक्करण को बढ़ावा देने और एकल उपयोग प्लास्टिक के उपयोग को रोकने के लिए राजधानी के लक्ष्मीबाई नगर में एक जागरूकता अभियान का आयोजन किया। अभियान के अंतर्गत स्थानीय निवासियों को प्रभावी पुनर्चक्रण के लिए गीले, सूखे, स्वच्छता और खतरनाक घरेलू सामान जैसी श्रेणियों में कचरे को अलग करने के महत्व के बारे में जागरूक किया गया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। सिंगापुर में विश्व शतरंज चैंपियनशिप में भारतीय ग्रैंड मास्टर डी कुकेश विश्व चैंपियन बन गए हैं। उन्होंने वर्तमान चैंपियन चीन के डिंग लिजेन को 14वीं बाजी में हराकर ये खिताब जीता। चैंपियनशिप में दोनों खिलाड़ियों के बीच कांटे की टक्कर रही। आज 14वीं और अंतिम बाजी में भारत के ग्रैंड मास्टर डी कुकेश ने खिताब देश के नाम किया। 2006 में जन्मे डी कुकेश सबसे युवा शतरंज चैंपियन हैं। डी कुकेश शतरंज के इतिहास में तीसरे सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर हैं। नई दिल्ली के इंडिया गेट पर 22वां दिव्य कला मेला आज से शुरू हो गया है। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधीन दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग भारत के दिव्यांग कारीगरों, उद्यमियों और कलाकारों की प्रतिभा, रचनात्मकता और उद्यमशीलता की भावना को प्रदर्शित करने के लिए इसका आयोजन कर रहा है। मेले में 100 से अधिक दिव्यांग उद्यमी और कारीगर अपने उत्पादों और कौशल का प्रदर्शन कर रहे हैं। मेले का उद्घाटन करते हुए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कहा है कि सरकार दिव्यांगों की क्षमताओं के निर्माण और सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि दिव्य कला मेला उन पहलों में से एक है जो दिव्यांगों के सपनों को साकार करने में मदद करती हैं। उन्होंने कहा कि दिव्यांगजनों के लिए सहानुभूति नहीं बल्कि उनका आत्मविश्वास बढ़ाने की जरूरत है। 11 दिवसीय ये मेला प्रतिदिन सुबह 11 बजे से रात 9 बजे तक खुला रहेगा। इसका उद्देश्य दिव्यांगजनों की क्षमता, दृढ़ संकल्प और कौशल को प्रदर्शित करना है। नई दिल्ली के मंडी हाउस स्थित रविन्द्र भवन परिसर में पुस्तकायन पुस्तक मेला अपने समापन की ओर है। साहित्य अकादमी द्वारा आयोजित इस मेले में विभिन्न प्रकाशक अलग अलग भाषाओं की पुस्तकें पाठकों के लिए उपलब्ध करवा रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि 10 दिनों तक चलने वाले इस मेले में पुस्तक प्रेमी बड़ी संख्या में आ रहे हैं।
पुस्तकायन पुस्तक मेला में अलग अलग प्रकाशकों के स्टॉल पर काफी चहल पहल है और लोग अपनी पसंद के लेखकों और कवियों द्वारा लिखी गई किताबें खरीद रहे हैं। पठन पाठन में लोगों की रुचि बढ़ाने के लिए पुस्तक मेले में कई सत्र भी आयोजित किए जा रहे हैं। इनमें हिंदी कवि सम्मेलन, बहुभाषी कविता पाठ, मुशायरा, लघु कथा वाचन और विभिन्न विषयों पर चर्चाएं शामिल है। पुस्तक मेला में कल 12 बजे बच्चों के लिए कहानी पाठ प्रतियोगिता है। वहीं शिक्षाविद अमरनाथ झा के निबंधों पर शाम 5 बजे व्याख्यान होगा। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में आगंतुक रोहित ने बताया कि उन्हें इस मेले में उनके पसंदीदा लेखकों कई पुस्तकें मिली है।
मेरा नाम रोहित है। पुस्तक मेला में हम आए हुए हैं तो यहाँ पर देख करके हमें बहुत सारी नॉलेज मिल रही है। इतनी सारी किताबें हैं, कई बुक्स हमने यहाँ से ली भी हैं और बहुत अच्छा अनुभव रहा है। मैंने भी बुक लिया है, शेयर मार्केट का, सुधा जी की बुक है वो। मैं काफी टाइम से उसके सर्च कर रहा था लेकिन वो मुझे यहीं पर मिली है। डिस्काउंट 25% डिस्काउंट है वो मिल रहा है।
रविवार तक चलने वाले इस मेले में प्रवेश निःशुल्क है और लोग सुबह 11 बजे से रात 8 बजे तक मेले में जा सकते हैं। प्रादेशिक समाचार के लिए आदर्श।
नई दिल्ली नगरपालिका परिषद NDMC ने आज वर्ष 2025-26 का बजट पेश किया है। एनडीएमसी ने वित्त वर्ष 2025-26 में अनुमानित 450 करोड़ रुपए से अधिक के शुद्ध मुनाफे के साथ मुनाफे वाले बजट की प्रवृत्ति को जारी रखा। इस बजट में बिजली के खंभों पर मिस्ट स्प्रे का छिड़काव, रात्रि सफाई कार्यक्रम, 100% नवीकरणीय ऊर्जा नगर निकाय बनना और छात्रों के लिए इनोवेशन लैब शामिल हैं। एनडीएमसी ने अपने बजट में संपत्ति कर की दरें नहीं बढ़ाने की घोषणा की है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि देश में पूजा स्थल अधिनियम के अंतर्गत अब कोई नया मुकदमा दर्ज नहीं किया जाएगा। न्यायालय ने लंबित मामलों में शीर्ष अदालत के अगले आदेश तक कोई अंतिम या प्रभावी आदेश पारित नहीं करने का भी आदेश दिया। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अध्यक्षता में विशेष पीठ ने केंद्र सरकार से 1991 अधिनियम की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 4 सप्ताह के भीतर अपना उत्तर देने को कहा। दिल्ली मेट्रो रेल निगम डीएमआरसी अकादमी ने दक्षिण कोरिया के सियोल मेट्रो और हनयांग विश्वविद्यालय के एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल की मेजबानी की। डीएमआरसी ने बताया कि 20 सदस्यों वाले प्रतिनिधिमंडल की यात्रा की शुरुआत अकादमी के दृष्टिकोण और क्षमताओं को प्रदर्शित करने वाली एक आकर्षक प्रस्तुति के साथ हुई। प्रसार भारती ने आगामी हॉकी इंडिया लीग का सीधा प्रसारण करने के लिए आज नई दिल्ली में हॉकी इंडिया के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौता ज्ञापन के साथ दूरदर्शन हॉकी इंडिया लीग 2024-25 के लिए आधिकारिक प्रसारण भागीदार बन गया है। इस अवसर पर हॉकी इंडिया लीग की संचालन समिति के सदस्य भोलानाथ सिंह और प्रसार भारती के अध्यक्ष नवनीत सहगल ने समझौता ज्ञापन का आदान प्रदान किया। हॉकी इंडिया लीग की संचालन समिति के सदस्य भोलानाथ सिंह ने कहा कि ये समझौता हॉकी को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा।
दूरदर्शन एक ऐसी चीज है जो घर घर में है, हर एक गांव देहात में है और जितने भी खिलाड़ी हैं वो सभी गांव देहात से ही आए हैं और मेरे ख्याल से आने वाले समय में गेम चेंजर साबित होगा। आज हॉकी इससे जुड़कर एक नया आयाम शुरू करने वाला है। दूरदर्शन के माध्यम से, प्रसार भारती के माध्यम से हॉकी को हर एक घर में पहुंचाएगा हॉकी इंडिया। ये प्रयास है, प्रसार भारती से जो एग्रीमेंट आज हम लोग साइन किए हैं और दोनों हम लोग मिलकर जो राष्ट्रीय खेल है हमारा उसको चरम सीमा पर बहुत ऊंचाइयों पर ले जाएंगे।
प्रसार भारती अध्यक्ष नवनीत सहगल ने कहा कि हम हॉकी को घर घर तक पहुंचाने में सफल होंगे।
हॉकी इंडिया और प्रसार भारती के बीच में एमओयू साइन हुआ है जिसमें कि अब से हॉकी इंडिया के सभी जो मैचेस हैं वो हॉकी इंडिया लीग शामिल करते हुए नेशनल चैंपियनशिप और जितने हॉकी इंडिया की टूर्नामेंट है उन सबको डीडी स्पोर्ट्स पे लाइव दिखाया जाएगा और ऑल इंडिया रेडियो से कमेंट्री उसकी की जाएगी। ये एक बहुत बड़ा कदम है। उन ग्रामीण क्षेत्रों तक पहले टेलीकास्ट होते थे, उनकी रीच नहीं थी, अब हमारे माध्यम से, प्रसार भारती के माध्यम से, डीडी स्पोर्ट्स के माध्यम से, ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से घर घर तक हॉकी को हम पहुँचाने में सफल होंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी जैसा उनका लक्ष्य है कि देश में खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाया जाए, खेल का और प्रचार प्रसार किया जाए, तो आज हॉकी इंडिया लीग, हॉकी इंडिया के साथ एमओयू जो प्रसार भारती का हुआ है उस तरफ ये एक बहुत बड़ा कदम है।
सशस्त्र सेना झंडा दिवस के अवसर पर राजनिवास में आज दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने स्थल सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी और नौसेना स्टाफ के प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी के साथ दिल्ली के वीरता सेना पदक और विशिष्ट सेवा पदक विजेताओं को सम्मानित किया। दिल्ली में सुबह के समय ठंडी हवा चली और बाद में मौसम सामान्य रहा, हालांकि शाम के समय ठंड महसूस की जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री कम 22.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं न्यूनतम तापमान सामान्य से 4 डिग्री कम 4.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, दिल्ली मंत्रिमंडल ने महिलाओं को सहायता राशि देने वाली महिला सम्मान योजना को पारित किया। निर्वाचन आयोग ने आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव के सिलसिले में महत्वपूर्ण बैठक की। नई दिल्ली के इंडिया गेट पर 22वां दिव्य कला मेला आज से शुरू और भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश सबसे कम उम्र के विश्व शतरंज चैंपियन बने। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।